गुरुदेव जी तथा भक्त प्रेमी श्रोता बहनों और भाइयों, हम संसार के ऐसे मोहा जाल में फंसे हुए हैं कि हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि इस माया जाल से किस प्रकार मुक्ति मिले। मगर जब कभी ऐसे महापुरुषों के प्रवचन सुनने को मिलते हैं, इनकी इनकी अमृत पानी का लाभ मिलता है, तो एक सत्संग ही एक महौषधि है जिससे हम सांसारिक माया जाल से उबर पाते हैं और वास्तविक जीवन को समझ पाते हैं। स्वामी जी की आराधना राधा और कृष्ण पर विशेष रूप से केंद्रित है, और आराधना में जब सही मार्ग प्रशस्त होता है तभी वास्तविक मार्गदर्शन मनुष्य का हो पाता है। अगर आपके अंदर किसी चीज को समझने की ललक नहीं है, तड़प नहीं है, समझ नहीं है या जानने की कोशिश नहीं है, तब तक आपको भक्त रस का आनंद कभी नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आवश्यक है आपको अपने आप इस प्रकार बनाना पड़ेगा, सुनने के लिए, समझने के लिए, कि जानने के लिए। और ऐसे महापुरुष जहाँ बैठे हों, भक्ति विदान जी जैसे लोग, नारायण स्वामी जैसे लोग, इन्होंने जीवन में वो रस घोल दिया है कि जिन्होंने इनका अमृत प्रिय भाषण सुना हुआ है वो जानते हैं इनके निकट। और वो जीवन ऐसा है कि आज राधा और कृष्ण की बात आज जैसे युगल गीतों में कही जाती है, सोचने की बात यह है कि जिस कृष्ण की बात आज कही जा रही है, उस कृष्ण ने कई कम से कम 5000 वर्षों से भी ज्यादा पहले संसार में अवतरित हुए थे वो, और उनकी जो मूल धारणा थी ये भी आप जानते हैं कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार जिया जाए, दुखियों के जीवन को किस तरह से सुखी बनाया जाए, ये उनका मूल उद्देश्य था। और ईश्वर को कैसे पहचाना जाए, ये सारी बातें आपने गीता में की हैं। आज गोस्वामी जी के बारे में मुझे दो शब्द कहना है, क्योंकि मैं इनसे एक बार पहले मिल चुका हूँ, ये दूसरा मौका मुझे मिलने का मिल रहा है कि इन्होंने भगवत गीता की जो टीका की है, शायद आप लोगों में से पढ़ी होगी, बड़ी विलक्षण टीका है वो, और उसको पढ़ करके पाठक एक बार झूम जाता है। जब ये भक्त रस में विभोर हो जाते हैं तो राधे राधे के सिवाय इनके पास और कोई स्मरण नहीं रहता, और यहाँ तक कि जब गाने लगते हैं तो ठुमका भी बजाने लगते हैं, तो वो तन्मयता जो होती वही भक्त रस का पूर्ण आनंद दे पाती। महाराज श्री बहुत ही विद्वान व्यक्ति, और भागवत कथा ऐसी कथा है जिसमें बड़े बड़े विद्वानों की कसौटी हो जाती है, सामान्य कथा नहीं है। कष्ट की लीलाएं जो विभिन्न रूपों में उसमें वर्णित की गई हैं वो सामान्य चीज नहीं है, हर विद्वान उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, उसको जानने के लिए बहुत गहराई में और गहरे उतरना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत वर्षों पहले वो लीलाएं की हमारे देश में, और आपको मालूम है कृष्ण का सारा जीवन ही अन्याय के प्रति समर्पित रहा है, चाहे वो कंस के साथ रहा हो, चाहे पूतना के साथ रहा हो, किसी के साथ रहा हो, इसकी व्याख्या तो महाराज जी बहुत अच्छी करेंगे ही, करते ही हैं। तो वैसे ही व्यक्तित्व को जब सोचते हैं तो जीवन जी करके कुछ सिखाता है लोगों को, उसका प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने वही किया था। योगिराज और उनकी व्याख्या करने वाले उनके भक्तों को क्या कहें, तुलसीदास जी ने तो कहा है कि राम से अधिक राम करदाता। तो श्री कृष्ण भगवान से भी ज्यादा अगर किसी को समझना है तो पहले गुरुदेव को समझिए, इनके अंतर मन को टटोलिए, इनसे निकटता स्थापित कीजिए, तब आपको पता लगेगा ईश्वर क्या है, उसकी भक्ति क्या है, और उसके निकट आप कैसे पहुंच सकते हैं। और जितनी पीड़ा और तन्मयता भक्त रस में आपकी होगी उतना ही ईश्वर की उपलब्धि आपको होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने बहुत संकट काल में देखा, आपने भी अनुभव किया होगा, जब कोई भी संकट आया तो कृष्ण या राधा का स्मरण आप कीजिए, आप उबर जाएंगे उससे। राधा केवल राधा ही नहीं थी, वो तमाम वैकुंठों की मालकिन थी, कृष्ण भी उनके आराधक, कृष्ण भी उनकी आराधना करते थे। ये शायद जानकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हकीकत है, वास्तविकता है, और इस वास्तविकता का दिग्दर्शन आज के कलिकाल में अगर कोई करा सकता है तो ऐसे महापुरुष ही करा सकते हैं, जिनके चरणों का सानिध्य हमें आपको प्राप्त है। बाकी आप पुस्तकों को पढ़ करके उतना ज्ञान नहीं अर्जित कर पाएंगे जिसकी अमृतवाणी का जब आस्वादन आप करेंगे, उस गंगा में अवगाहन करेंगे, तब आप कुछ मिल पाएगा। और वो श्रेय भक्ति वेदांत स्वामी जी को है, इन्होंने बहुत से मठ स्थापित किए हैं। वृंदावन की गैर हाजिरी में जैसे लगता है सूना हो गया, यहाँ वृंदावन वाले लोग मेरा ख्याल बहुत होंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज अगर हमारे देश का नेता थोड़ा भी समझ ले ईमानदारी क्या चीज होती है, त्याग क्या चीज होती है, तपस्या क्या चीज होती है, साधना क्या चीज होती है, तो हमारा हिंदुस्तान फिर से बड़ा खुशहाल हो जाए। अगर वो नजर नहीं आता कि ऐसी भी कोई स्थिति हमारे सामने है, ऐसे महापुरुषों ने ही वो दीपक जलाए हैं, वो दीपक दिखाए हैं, अंधेरे में भटकते लोगों को वो राह दिखाई है, जिनका जीवन ही बदल गया, जिनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ, ईश्वर के प्रति गहरी आस्था पैदा हुई, निराशा में डूबे हुए लोगों ने नवजीवन प्राप्त किया। आज आप उनकी अमृत वाणी का प्रसाद साधन करें। परम गुरुदेव जी के और आपके बीच में अधिक समय नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं भी थोड़ा उनकी वाणी का आज लाभ मुझे मिले, और आप भी उनकी वाणी का लाभ लेने के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिले। मैं गुरुदेव जी से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे शहर में बार बार पधारें, हम लोगों के अपने चरणों का आशीर्वाद दें, इस भौतिक बात से उबारें जिस भौतिक बात में हम आज घिरे हुए हैं, और वो उबारने का अगर काम कोई कर सकता है तो आपकी अमृत वाणी ही कर सकती है। जिस सख्त आपकी सरिता गंगा की प्रवाहित होती है, उस सख्त सख्त आनंद विभोर हो जाते हैं। इन चंद शब्दों के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ, तथा भक्तजनों को भी प्रणाम करता हूँ।
से भागे चले आ रहे हैं कायरा कैन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव श्री विश्वनाथ रावत। श्री विश्वनाथ जी महाराज जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। श्री विश्वनाथ जी अपनी पत्नी के साथ बहुत पहले से आगे आके बैठी हैं, बहुत ही आपके अंदर तन्मयता है महाराज जी से मिलने की, पिछले 2-3 वर्षों से शायद, आज आप दर्शन कर रहे हैं, आइए। श्री विश्वनाथ जी अपनी पत्नी के साथ महाराज जी को माल्या अर्पण करें। विश्वनाथ जी ने कायरा कैन कंपनी में आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और मैं सोशल स्टडीज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सुश्री बीना गांगुली, साइंस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्री सुदीप्ता जोशी, आप लोग बड़े दूर से महाराज जी के स्वागत के लिए आए हैं और माल्यार्पण करने के लिए उत्सुक हैं। कृपया शीघ्र आए जिससे महाराज जी के प्रवचन का कार्यक्रम आरंभ हो सके। महाराज जी आज युगल गीत पर अपने विचार कहेंगे। युगल गीत श्रीमद् भागवत में 26 श्लोकों में वर्णित है।
आज हमारे बीच में जो आज की सभा के मुख्य अतिथि हैं, वह श्री गोपाल शेट्टी जी, मुंबई के उप महापौर। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो महाराज जी को माल्यार्पण करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्री मेडिकल जी से निवेदन करूंगा कि वो महाराज जी के स्वागत में अपने दो विचार, जो भी कोई पढ़ के नहीं जो उन्हें अनुभूति अंदर से हुई है, वो आधा पौना घंटे से महाराज जी का प्रवचन सुन रहे हैं, तो जो अंदर से वास्तविक अनुभूति है, उन्हें क्या अनुभव हुआ महाराज जी की कथा सुन के, उनका दर्शन करके अपने विचार प्रकट करें।
नारायण गोस्वामी जी महाराज, उनके सभी शिष्यगण, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रमेश मेड़ेकर जी, उपस्थित सभी श्रद्धालु माता वडील भाई और बहनों, पिछले करीब करीब डेढ़ घंटे से जी का प्रवचन हम सभी लोग यहाँ पर सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में उन्होंने जो सारी बातें हम सबको बताई, और ऐसे पूरे देश में कहीं ऐसे संत है जो अपने भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग करके भारतवर्ष में रहने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोभाव को बढ़ाने के लिए आज देश भर में काम कर रहे हैं, और ऐसे संतों के माध्यम से ही अपने देश में इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी ये अपना सारा देश इतना अच्छी तरह से इस देश का कारोबार चल रहा है, और अनेक समस्या होते हुए भी हर व्यक्ति में कोई न कोई आशाएं हम सबको दिखाई देती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी सभी जो भाविक लोग हैं, ऐसे जो कोई भी संतों के माध्यम से जो प्रवचन हम सभी लोगों को सुनने के लिए मिलता है, ऐसे प्रवचन के माध्यम से हम सभी लोगों ने उसमें भाग लेना चाहिए। मैं मुंबई के 1.25 करोड़ नागरिकों की ओर से गोस्वामी महाराज और उनके सभी सहयोगियों का स्वागत करता हूं, और भविष्य में भी फिर कभी भी वो मुंबई शहर में आएंगे तो जिस किसी प्रकार के भी उनका अगर सेवा करने का सौभाग्य अगर मुझे मिलेगा तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगा। मुझे इस प्रवचन के लिए जिन किन्होंने भी मेरे जो हित चिंतक है उन्होंने यहाँ पर बुलाया, और आप सभी भाविकों का इतने बड़ी संख्या में दर्शन लेने का जो अवसर प्राप्त करके दिया, इसलिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।
परम पूजनीय,
ये हमारे सामने
भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, सारे हम यहाँ उपस्थित भक्तगण, जब मैं भगवान श्री कृष्ण की लीला कीर्तन के माध्यम से सुन रहा था और उससे जो मुझे अनुभूति हुई, उस अनुभूति को यहाँ रखना मेरे लिए थोड़ा कठिन है, मुझे यहाँ पर मानव में स्वभावतः जो प्रवृत्तियां होती है उनमें भगवान श्री कृष्ण जी ने जो बताया है कि जो कुछ मेरे लिए है वो मेरा है, दूसरे का है वो भी मेरा है, यह प्रवृत्ति हमारे बीच में न रखते हुए जो मेरा है वो दूसरे के लिए है और वो मैं दूसरे के काम के लिए लाऊंगा, यह अनुभूति हमारे जैसे मुंबई शहर एक यंत्र की तरह दौड़ते रहता है,
घड़ी के कांटे किसके लिए रुकते नहीं, उस प्रकार से मुंबई के लोग घड़ी को देखते देखते अपने जीवन का मार्गक्रमण करते हैं। और भगवान को याद करने के लिए हम सब में समय उपलब्ध नहीं है, सिर्फ काम करते रहते हैं। और वो सब काम करने के बाद भी हमें जीवन में समाधान प्राप्त नहीं होता, और वो समाधान प्राप्त नहीं होता इसीलिए हमें लगता है कि मेरा मेरा है और दूसरों का भी मेरा है। तो ये समाधान का कोई मार्ग नहीं। तो उसमें से समय निकालकर जब अध्यात्म ही हमें पूर्ण जीवन समाधान करने के लिए एक मार्ग बनकर आएगा, वो अध्यात्म के लिए हमने कुछ थोड़ा समय देना चाहिए और वो अध्यात्म का राह पर हम सब ने चलना चाहिए। आज मुझे यहाँ आने का उसी प्रकार का यह अवसर प्राप्त हुआ कि जबकि राजनैतिक भाषण करना और राजनैतिक भाषण सुनना उसके सिवाय मैं मेरे मन को एकाग्र चित्त करके मैं कोई और सुन रहा हूँ, और यह सुनते सुनते मैं स्वयं कुछ अनुभूति कर रहा हूँ। यह अनुभूति मेरे मन में, मेरे आत्म में एक स्वयं प्रकाश डालती है। अगर मैं थोड़ा समय इस प्रकार से हर रोज कुछ समय बाजू में निकाल कर करूँगा और उस प्रकार से सब लोग करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग, यह मेरा जो काम है वो दूसरे के लिए है, मेरा जो कुछ है वो दूसरों के लिए है और दूसरों के लिए मुझे कुछ करना है, यह भावना उसमें निर्माण होगी। आज यहाँ पर आने के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त हुआ यह सब महाराज जी की कृपा है। आप सबके बीच में भी शांत चित्त से बैठने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद भी कभी महाराज जी मुंबई में पधारेंगे तो उनकी सेवा करने का, उनके यहाँ आकर प्रवचन सुनने का अगर मौका मिला, अवसर प्राप्त हुआ, तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। आप सबके साथ फिर एक धन्यवाद।
श्रीमती गुलकंदी देवी, स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद खंडेलवाल की धर्मपत्नी, जो शब्दों में नहीं, पेपर पढ़कर नहीं, अपने हृदय से महाराज जी को अभिनंदन करना चाहती है। श्रीमती गुलकंदी देवी मंच पर आए। कल्याण खंडेलवाल मैसर्स मावा वाला थाना कल्याण इत्यादि में उनकी बहुत दुकानें हम सब जानते हैं, तो उनकी जो ओनर हैं श्रीमती गुलकंदी देवी, कृपया मंच पर आए। श्री पहला जी संधानी समुपस्थित हैं। ये मध्य प्रदेश के श्री पहला जी संधान के सुपुत्र हैं। बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आप बम्बई नगरी में सुविख्यात एवं अति लोकप्रिय हैं। आपके द्वारा न जाने कितने मुरझाए फूलों को नया जीवन प्राप्त हुआ। इसके पश्चात श्री समदानी जी से अनुरोध करूंगी कि आज के कार्यक्रम के और महाराज जी के विषय में दो शब्द कहें। श्री प्रमोद जी माहेश्वरी, श्री समदानी जी का स्वागत करें।
नारायण महाराज जी गोस्वामी जी के चरणों में मेरा नमस्कार। जब भी भगवान की असीम कृपा होती है तो ऐसे भगवतजनों के दर्शन होते हैं और उनका लाभ लेने का एक अवसर मिलता है। मुझे अब बड़ा गौरव प्रदान फील होता है कि मैं आज इस में सम्मिलित होकर के गुरु जी से कुछ सीखने के लिए, दो शब्द सुनने के लिए मुझे अवसर मिला, उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। वैसे देखा जाए कि गुरु की महिमा तो सबसे बड़ी ही मानी जाती है। कहते हैं कि जब भगवान रूठ जाते हैं या बिछुड़ जाते हैं तो, या नाराज हो जाते हैं तो, सिर्फ गुरु ही आपकी बचाव कर सकते हैं या आपको
संभाल सकते हैं, लेकिन जब गुरु रुट जावे तो आपको कौन संभालेगा। इसका मतलब यह है कि गुरु के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसका दूसरा एक उदाहरण एकलव्य जी को देखो, गुरु की सिर्फ छवि रख करके उनने धनुष बाण की कला के अंदर कितनी बड़ी परिलब्धि हासिल करी, उसका तो आप सिर्फ गुरु की छवि से ही कर सकते हैं। यहाँ तो साक्षात गुरु जी हैं, उनको सुनने का अवसर मिल रहा है और उनके दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, मेरे को लगता है उससे बड़ा अहोभाग्य नहीं हो सकता है। गुरु की महिमा तो अपने यहाँ पे मानी ही गई है, जैसा डॉक्टर मधु खंडलवाल ने भी बताया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, यानी कि गुरु के बिना आप भगवान तक भी नहीं पहुंच सकते। तो गुरु की महत्वता तो सबको ही मानी जाती है। भगवान सबके अंतःकरण में रहते हैं, लेकिन बाहर से दुखों का निवारण करना, मार्गदर्शन करना और सही तरीके से चलना, ये सब गुरु ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। इसलिए गुरु की महिमा के लिए तो अगर बोलने का जाएंगे तो कुछ अंत ही नहीं होगा। गुरु के बिना अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इतना बोल करके मैं समाप्त करता हूं।
कार्यक्रम के अंत में मैं अब आमंत्रित कर रही हूं बंबई नगरी के सुविख्यात श्री राधे श्याम जी मालानी को। श्री मालानी जी यश बिरला ग्रुप के एग्जीक्यूटिव हैं और उनके ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं एवं अस्पतालों के कार्य देखते हैं। श्री संत भानुदास महाराज संस्था बर्ध मनेरी जिला बर्धा में अपंग लगभग 400 बच्चों की मुक्त हस्त से सहायता कर रहे हैं। महाराज जी के विषय में अपने उद्गार व्यक्त करें।
पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। निवेदन कर श्रीमती डॉक्टर मधु खंडेलवाल का मैं आभारी हूँ, क्योंकि पूज्य महाराज जी के श्री चरणों का दर्शन कराया है और उनके संदर्भ में दो शब्द कहने का सुअवसर प्रदान किया है। पूज्य महाराज जी के विषय में मैं क्या कह सकता हूँ, केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब से पूज्य महाराज जी का मुझे सानिध्य मिला है, मैं श्री राधा कृष्ण के प्रति उनकी दिव्य भक्ति से अभिभूत होता रहता हूँ। श्री महाराज जी साधारण कथावाचकों, भागवत वक्ताओं और भजन गायकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, अपितु वे दिव्य रस के ऐसे स्रोत हैं कि जिनके दर्शन मात्र से ही तन मन भक्ति रस में भीगने लगता है। यद्यपि पूज्य महाराज जी का सानिध्य मुझे बहुत प्राप्त नहीं हो सका, फिर भी जब जब उनके दर्शन किए हैं मैंने अपने अंतकरण में अलौकिक आनंद का अनुभव किया है। आचार्य चरण की अपने शिष्यों के प्रति इतनी अनुकंपा है कि उनसे मिलने पर, विशेषतः मधु जी से मिलने पर ऐसी अनुभूति होती है कि पूज्य महाराज जी के भक्ति भाव एवं दिव्य रस मुझ में जीवंतता और सरसता का संचार करते हैं और मैं स्वयं को वृंदावन में अवस्थित मानने लगता हूँ। मैं पूज्य श्री महाराज जी से करबद्ध अनुरोध करता हूँ कि वे अपना वरद एवं अभयहस्त मेरे ऊपर बनाए रखें। दंडवत प्रणाम के साथ मैं विराम लेता हूँ।
हरे कृष्णा। मुंबई में भागवती कीर्तन व प्रवचन का जो भव्य सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, यह आयोजन 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगा, जो कि मुंबई के मलाड क्षेत्र में धूड़मल बजाज हॉल में आयोजित किया गया है, जिसके प्रवक्ता हैं प्रातः समणी श्री श्रीमद भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी। महाराज जी 6 दिनों तक इस सत्संग में रहेंगे। प्रथम दिन का विषय है, यानी 4 अप्रैल को भक्ति तत्व एवं सिद्धांत, 5 तारीख को भ्रमर गीत, 6 तारीख को युगल गीत, 7 तारीख को गोपी गीत पूर्वार्ध 8 को गोपी गीत उत्तरार्ध और 9 को वेणु गीत। इन 6 दिनों के प्रोग्राम में महाराज जी इन विषयों पर प्रवचन करेंगे और बहुत विशाल आयोजन है। पूरे मुंबई में इसका प्रचार हुआ है जिसमें हजारों लोग महाराज जी को सुनने के लिए इसमें पधारे हैं। आयोजन श्री गौड़ी विधान समिति के ही समस्त भक्तों की तरफ से, जो कि सभी भक्त मुंबई प्रदेश के ही हैं, उन सब के सहयोग से ही इसका आयोजन किया गया है। सभी भक्तों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें तन मन धन और वचन से सहयोग दिया है। मुख्य रूप से श्री बद्री प्रसाद खंडेलवाल जी परिवार, श्री योगेंद्र कुमार अग्रवाल जी, श्री जानकी प्रसाद माहेश्वरी जी, श्री जयदेव शर्मा जी, श्री जेपी पांडे जी, डॉक्टर देवीदास यादव, श्री शिव सिंह कंडारी, श्री विशन सिंह अधिकारी जी, श्री जीत सिंह बिष्ट, श्री पुरुषोत्तम मलासी, श्री राजेंद्र सिंह नेगी, श्रीमती नौडियाल, श्री गोपाल दास चौनाल जी, श्री बलबीर प्रसाद भट्ट और श्री हेमंत रानावड़े, इन लोगों का सहयोग सराहनीय है। महाराज जी 8 तारीख की रात को ब्राजील के लिए रवाना होंगे, इसलिए 8 और 9 की कथा श्री रसानंद प्रभु और श्री शुभानंद प्रभु करेंगे। प्रचार समाचार और न्यूज़पेपर के अखबारों के माध्यम से भी बहुत विस्तार से हुआ है। नवभारत टाइम्स और जनसत्ता ने विशेष रूप से इस प्रोग्राम के बारे में बहुत सहयोग दिया, जिसमें प्रतिदिन विज्ञापन और महाराज जी की प्रवचन छपते रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मुख्य आयोजन श्री गौड़ी वेदांत समिति मुंबई के अध्यक्ष श्री रघुनाथ दास जी के द्वारा संपन्न हुआ और श्रीमती डॉक्टर मधु खंडेलवाल जी का भी सहयोग सराहनीय है। उन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत सहयोग दिया और दूसरे इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कार्यक्रम में मुंबई के जानी मानी हस्तियों ने महाराज जी का बड़ा भव्य स्वागत किया, जिसमें मुंबई के मेयर श्री नंदू साटम जी, डिप्टी मेयर श्री गोपाल शेट्टी जी और कांदिवली मलाड क्षेत्र के MLA विधानसभा सदस्य श्री माधवराव मराठे जी और श्री कैप्टन राज के टंडन, जो कि अमेरिका में रहते हैं और एक बहुत बड़ी हस्ती हैं हमारे भारत की तरफ से, उन्होंने भी महाराज जी का भव्य स्वागत किया। और श्रीमती भारती ने, जो कि हिंदुजा ग्रुप की, हिंदुजा परिवार की लड़की हैं और उनके पति देव श्री मनोज मोटवानी जी ने भी महाराज जी का भव्य स्वागत किया। और 4 तारीख के प्रोग्राम 4 से 9 था, तो 4 तारीख को मुख्य अतिथि थे मुंबई के मेयर श्री जंदू साडम और कांदिवली मलाड क्षेत्र के MLA विधानसभा सदस्य श्री माधव मराठे। 5 तारीख के मुख्य अतिथि थे श्रीमती भारती मोटवानी, श्री मनोज मोटवानी और श्री राज कैप्टन राज के टंडन। 6 तारीख के मुख्य अतिथि थे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मुंबई प्रदेश के श्री रमेश मेडिकर जी और मुंबई के डिप्टी मेयर श्री गोपाल शेट्टी जी। इन्होंने महाराज जी का बड़ी गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया और भविष्य में श्री गौड़ी वेदांत समिति का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कार्यक्रम मुंबई में होगा उसमें भविष्य में तन मन धन और वचन से सहयोग देने का वादा किया और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करके ये लोग ने बहुत खुश नजर आ रहे थे। और फिर महाराज जी का मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोटरी क्लब में प्रोग्राम रखा गया, जिसका आयोजन श्री रमेश खंडेलवाल जी ने किया है। वहाँ महाराज जी मुंबई की जो व्यापार जगत की मुख्य हस्तियां हैं, महाराज जी उनसे मिले और उन लोगों ने महाराज जी का दर्शन करके अपना जीवन कृतार्थ किया। महाराज जी का ये जो प्रोग्राम मुंबई में रखा गया, तो मैंने सोचा कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम होगा कि मुंबई के समस्त नागरिक इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन जब आयोजन किया गया तो लोगों की इतनी भीड़, दर्शनार्थियों की इतनी भीड़, श्रोताओं की इतनी भीड़ कि वहाँ बैठने को जगह ही नहीं, तो लोगों को बाहर खड़ा होना पड़ता था। तो इससे ऐसा अनुभव हुआ कि भविष्य में जगह काफ़ी नहीं है, इसलिए भविष्य में महाराज जी का अगर कोई प्रोग्राम होगा तो बड़ा पंडाल प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें 20,000, 50,000, 1,00,000 आदमी एक साथ बैठ सकें और महाराज जी की कथा का श्रवण करके अपना जीवन सफल बना सकें। तो भविष्य में हमारा यही प्रयास है कि इससे, आज महाराज जी के मुंबई में हजारों शिष्य हैं और सभी चाहते हैं कि भविष्य में, आज हमने ये प्रोग्राम किया तो भविष्य में 10 गुना से भी अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आज महाराज जी से 1,000 आदमी लाभान्वित हुए हैं तो भविष्य में लाखों आदमी महाराज जी की शरण ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाएं, यही हमारा प्रयास है। हरे कृष्ण।